लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पेत्रुस एवं पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महाकेचर घर के प्रांगण में रविवार 29 जून को भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित करते हुए रोम की कलीसिया के मूल की याद की। उन्होंने कहा,
कारी फ्रतेले सोरेले, बुआना डोमेनिका।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Oggi la grande festa della Chiesa di Roma, generata dalla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo.
आज रोम की कलीसिया के लिए एक महापर्व है जो प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के साक्ष्य से उत्पन्न हुई है और उनके तथा कई अन्य शहीदों के खून से उपजाऊ बनी है। उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए एवं वर्तमान के ख्रिस्तों के बलिदान को जोड़ते हुए उन्होंने कहा,
Anche ai nostri giorni, in tutto il mondo.
हमारे समय में भी पूरे विश्व में ऐसे ख्रिस्ते हैं जिन्हें सुसमाचार इतना उदार एवं साहसी बनाता है कि वे अपने जीवन तक से कीमत चुकाते हैं। इस प्रकार रक्त की ख्रिस्ते एकता ख्रिस्ते कलीसियाओं के बीच एक अदृश्य एवं गहन एकता के रूप में मौजूद है जो अभी तक एक दूसरे के साथ पूर्ण एवं दृश्य सहभागिता में नहीं रहते हैं। संत पापा ने कहा, इसलिए मैं इस पौत्र पर्व पर यह पुष्टि करना चाहता हूं कि मेरी धर्मदक्ष सेवा एकता की सेवा है और रोम की कलीसिया संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के रक्त द्वारा सभी कलीसियाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, वह चट्टान जिसे पेत्रुस को नाम मिला वे स्वयं ख्रिस्त हैं, एक पत्थर जिससे मनुष्यों ने अस्वीकार कर दिया लेकिन ईश्वर ने आधारशिला बनाया। यह प्रांगण एवं संत पेत्रुस और संत पौलुस का महागिरजाघर हमें बतलाते हैं कि कैसे यह उलटफेर हमेशा जारी रहा। ये महागिरजाघर प्राचीन शहर के किनारे स्थित है, फौरी मूरा जैसा कि आज भी कहा जाता है। जो आज हमारे लिए महान एवं गौरवशाली प्रतीत हो रहा है वह पहले अस्वीकार किया एवं निकाल दिया गया था क्योंकि यह सांसारिक मानसिकता के विपरीत थी। संत पापा ने कहा कि जो यीशु का अनुसरण करता है वह धन्यताओं के रास्ते पर चलता है जहां वह दीनता विनम्रता दयालुता की भावना के साथ न्याय के लिए भूखा एवं प्यासा है, शांति के लिए काम करने वालों को विरोध और यहाँ तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर की महिमा उनके मित्रों पर चमकती है और मन परिवर्तन तक के मार्ग में उन्हें आकार देती है। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रेरितों की कब्रों पर जो कि 1000 साल पुराना तीर्थस्थल है, हम भी पाते हैं मन परिवर्तन को मन परिवर्तन में जी सकते हैं। पोप ने संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के दूसरे पक्ष पर भी प्रकाश डाला जहां नया व्यवस्थान उन लोगों की गलतियों विरोधाभासों और पापों को नहीं छिपाता। संत पापा ने कहा, वास्तव में उनकी महानता क्षमा द्वारा आकार लेती है। जी उठे प्रभु उन्हें अपने मार्ग पर वापस लाने के लिए एक बार से अधिक बार बुलाने आए। यीशु कभी भी सिर्फ एक बार नहीं बुलाते। यही कारण है कि हम सभी हमेशा आशा रख सकते हैं, जैसा कि जयंती भी हमें याद दिलाती है। कलीसिया में एकता एवं कलीसियाओं के बीच एकता क्षमाशीलता और आपसी विश्वास से पोषित होता है जिससे अपने परिवारों एवं अपने समुदायों से शुरू करें। अगर यीशु हम पर भरोसा करते हैं तो हम भी उनके नाम पर एक दूसरे पर भरोसा करें। तब प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
Gli apostoli Pietro e Paolo, insieme con la Vergine Maria, intercedano per noi. Affinché in questo mondo lacerato la Chiesa sia casa e scuola di comunione.
प्रेरित संत पेत्रुस एवं पौलुस कुंवारी मरियम के साथ मिलकर हमारे लिए मध्यस्थता करें, ताकि इस छत विछत संसार में कलीसिया एक घर एवं एकता का विद्यालय बने। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Preghiamo insieme. Angelus Domine, nunziavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित एवं विभिन्न माध्यमों से उन्हें सुन रहे लोगों को संबोधित करते हुए संत पेत्रुस के दान संग्रह में सहयोग करने के लिए अपना आभार प्रकट किया। कृतज्ञता के शब्द कहने से पहले उन्होंने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बांगू स्थित लाइसी बर्थेलेमी बोंगाटा समुदाय की याद की और विश्व को प्रभावित करने वाले युद्धों के लिए कूटनीतिक समाधान की भी अपील की। संत पापा ने कहा,
Cari fratelli sorelle, assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthelemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बांगू स्थित लाइसी बर्थेले में बोंगाटा समुदाय के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं, जो उस दुखद दुर्घटना से शोकित हैं जिनके कारण कई छात्रों की मृत्यु हो गई है और कई घायल हैं। प्रभु उन परिवारों और पूरे समुदाय को सांत्वना दे। उसके बाद संरक्षक संतों के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संत पापा ने कहा,
un pensiero carico di affetto voglio mandarlo ai parroci e a tutti i sacerdoti che lavorano nelle parrocchie romane con riconoscenza e incoraggiamento per il loro servizio.
मैं आप सभी को विशेषकर रोम के विश्वासियों को आज संरक्षक संतों के पर्व पर बधाई देता हूँ। मैं रोम के पल्ली पुरोहितों एवं अन्य सभी पुरोहितों को उनके सेवा कार्यों के लिए आभार प्रकट करता हूँ और प्रोत्साहन सहित स्नेह भेजना चाहता हूँ। तत्पश्चात संत पापा ने पेत्रुस के दान संग्रह के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह पर्व पेत्रुस के दान संग्रह दिवस को भी चिन्हित करता है, जो पोप के साथ सहभागिता और उनके प्रेरित कार्य में भागीदारी का प्रतीक है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो अपने दान के माध्यम से पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मेरे पहले कदमों का समर्थन कर रहे हैं, और मैं उन सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ जो रोम में संत पेत्रुस एवं पौलुस के स्मरण स्थलों के माध्यम से कोवादिस नामक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ इस पहल का आयोजन किया, जो रोम के संरक्षक संतों को जानने और उनका सम्मान करने में मदद करता है। तत्पश्चात विभिन्न देशों से आए सभी महाधर्मदक्षों एवं विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा,
Saluto i fedeli di vari paesi venuti per accompagnare i loro arcivescovi metropoliti che oggi hanno ricevuto il palio.
मैं विभिन्न देशों से आए उन महाधर्मदक्षों एवं विश्वासियों का अभिवादन करता हूँ जो पालियों प्राप्त करने आए हैं। मैं यूक्रेन से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब मेक्सिको, क्रोएशिया, पोलैंड, अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राजील और इंडोनेशिया से आए संत पेत्रुस एवं पौलुस की गायक मंडली, साथ ही यूक्रेन में रहने वाले असंख्य इरिट्रिया के विश्वासियों का, कोले में संत जुस्तीना के वेदी सेवकों और बोस्को के सोमारीवा के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापन विया दिला कुंचिलत सियोने और संत पियो बारहवें प्रांगण के फूलों से सुंदर सजावट के लिए कलाकारों को धन्यवाद दिया। इसके बाद संत पापा ने युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा,
ए जोवने दे सोमारीवा दिल बोस्को, रिंग्राजियो ला प्रोलोको दे रोमा कैपिटाले ए ली आर्टिस्टी के हैनो रियलिजातो लिन्फियोराता इन विया दिला कंसिलियाजियोने ए पियाजा पियो दोडिसेसिमो।
बहनों एवं भाइयों, आइए हम प्रार्थना जारी रखें ताकि हर जगह हथियार शांत हो जाए और हम बातचीत के माध्यम से शांति के लिए काम करें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
सोरेले फ्रातेली, continuiamo a pregare perché dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo. Buona domenica a tutti!
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने रोम में धर्म बहनों से आग्रह किया कि वे अपनी महासभा या जुबली के लिए मसीह में निहित रहें और यह सुनिश्चित करें कि ईश्वर हर तरह से उनका सब कुछ रहे। संत अगुस्टीन क्रिश्चियन जीवन में ईश्वर की प्रधानता की बात करते हुए पुष्टि करते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, आपका सब कुछ। अगर आप भूखे हैं तो ईश्वर आपकी रोटी है, अगर आप प्यासे हैं तो ईश्वर आपका पानी है, अगर आप अंधेरे में हैं तो ईश्वर आपका कभी न मिटने वाला प्रकाश है, अगर आप नंगे हैं तो ईश्वर आपका वस्त्र है। वास्तव में हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये शब्द मेरे लिए किस हद तक सच है, प्रभु मेरे जीवन प्रेम या प्रकाश की प्यास को कितना संतुष्ट करते हैं। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन में दिव्य दया की पुत्रियों संत बसिल महान के धर्म समाज की धर्म बहनों, एम्पारो के अगुस्टीनियन धर्म बहनों और पवित्र हृदय की फ्रांसिस्कन धर्म बहनों को दिए अपने संदेश में यह टिप्पणी की। संत पापा ने उल्लेख किया कि मसीह में मजबूती ही है जिसने उन लोगों को प्रेरित किया जो हमसे पहले गए, हमारे जैसे पुरुषों और महिलाओं, हमारे जैसे उपहार और सीमाओं के साथ उन चीजों को करने के लिए जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था वे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसने उन्हें सच्चाई के बीज बोने में सक्षम बनाया जो सदियों और महाद्वीपों में टिके हुए अब व्यवहारिक रूप से पूरी दुनिया तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपकी यहाँ की उपस्थिति दर्शाती है। संत पापा ने उन्हें याद दिलाया कि कुछ धर्म बहनें अपने धर्म समाज की धर्म सभा के कारण उपस्थित हैं और अन्य अपनी जयंती तीर्थ यात्रा के लिए, जबकि दोनों मामलों में वे संत पेत्रुस की कब्र पर प्रभु के प्रति अपने प्रेम और कलीसिया के प्रति अपनी निष्ठा को नवीनीकृत करने के लिए आई हैं। यह देखते हुए कि उनका धर्म समाज अलग अलग समय में और अलग अलग परिस्थितियों में स्थापित की गई, संत पापा ने याद दिलाया कि उनके इतिहास एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं जिसे संत अगुस्टीन, संत बसिल और संत फ्रांसिस, जिनके तप, साहस और जीवन की पवित्रता ने आपके संस्थापकों को दूसरों की सेवा करने के नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह बच्चों, गरीब लड़कियों, लड़कों, अनाथों, प्रवासियों और हाल ही में बुजुर्गों और बीमारों के साथ साथ दया के कई अन्य मंत्रालयों सहित सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने में प्रकट होता है। अंत में अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करने से पहले संत पापा लियो 14वें ने धर्म बहनों को उनके काम और निष्ठा के लिए धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि धन्य कुंवारी माता मरियम उनके साथ रहें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह वाटिकन में लोकतांत्रिक गणराज्य साओ टोमे और प्रिंसिपे के राष्ट्रपति श्री कार्लोस मानुएल वेला नोवा से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने बाद में वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान वाटिकन और लोकतांत्रिक गणराज्य साओ टोमे और प्रिंसिपे के बीच अच्छे संबंधों पर ध्यान दिया गया। उधर संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन 28 जून से 4 जुलाई तक रोम में FAO सम्मेलन का 44वां सत्र आयोजित कर रहा है। FAO द्वारा खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से निपटने के लिए अपनी स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। संत पापा ने कहा कि कलीसिया वैश्विक भूख के घोटाले को समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करती है। उन्होंने यीशु की उस चिंता को याद किया जो उन्हें सुनने के लिए आए लोगों की भीड़ को भोजन कराने के लिए थी। उन्होंने कहा, हमें एहसास है कि मसीह द्वारा किया गया सच्चा चमत्कार यह दिखाना था कि भूख को हराने की कुंजी लालच से जमाखोरी करने की तुलना में साझा करने में अधिक निहित है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि कई लोग अभी भी क्रूरता के शिकार हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में अत्यधिक उत्पादन के बावजूद भूख और कुपोषण जारी है। संत पापा ने कहा, अधिकांश संघर्ष अब नियमित सेनाओं के बजाय सशस्त्र नागरिक समूहों द्वारा लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों को जलाने और मानवीय सहायता को रोकने जैसी रणनीतियां रक्षाहीन नागरिकों पर भारी पड़ती हैं। संत पापा लियो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्यवाही करने और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने का आह्वान किया ताकि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। संत पापा ने एकजुटता की भावना से समन्वयित जलवायु कार्यवाही के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने का आह्वान किया। अंत में संत पापा ने सभी को शांति के कारीगर बनने, आम भलाई के लिए काम करने हेतु आमंत्रित किया। और संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत और शहर के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस के पर्व के अवसर पर मिसा समारोह की अध्यक्षता की। इस मिसा समारोह में उन्होंने 54 नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों को आशीर्वाद और पालियम पहनाया। पालियम संत पापा द्वारा मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों के कंधों पर रोम के धर्माध्यक्ष के साथ उनके संवाद और झुंड के लिए अपना जीवन बिताने के उनके मिशन के प्रमाण के रूप में दिया जाता है, जो अच्छे चरवाहे की तरह अपने कंधों पर अपनी भेड़ों को ले जाने का अनुकरण करते हैं। संत पापा ने कहा कि हम विश्वास के दो भाइयों पेत्रुस और पौलुस कलीसिया के स्तंभों का सम्मान करते हैं। दो प्रेरितों का पर्व एक ही दिन मनाया जाता है। वे भी एक थे, हालांकि वे अलग अलग दिनों में शहीद हुए थे, लेकिन वे एक ही थे। यह मिलन आत्मा द्वारा संभव बनाया गया है और विविधतापूर्ण करिश्मे, उपहारों और मंत्रालयों की समृद्ध विविधता के कारण मतभेदों को जोड़ता है और एकता के पुल बनाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।